जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। एक सौ पिचासी पेज निकालो। आचार्य जयसेन का कोटेशन चल रहा है, कुछ विशेष है जो इस प्रकार है ना, किंच विशेषा जो संस्कृत में कल बताया था ना, ये उसका अर्थ है। अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है, एक ज्ञानियों के आश्रित अप्रतिक्रमण और एक अज्ञानियों के आश्रित अप्रतिक्रमण। उनमें अज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण तो विषय कषाय की परिणति रूप ही होता है, क्योंकि विषय कषाय में है, उसका उसने प्रतिक्रमण नहीं किया तो उसी में लगा रहेगा। किंतु ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण शुद्धात्मा के सम्यक सिद्धांत ज्ञान और अनुष्ठान माने आचरण स्वरूप त्रिगुप्तिमय यानी स्वानुभूतिमय होता है। जब वो कहते हैं अपने त्रिगुप्ती थे सहज तरह थे, तो त्रिगुप्ती वाले जो होते हैं वो शुद्धोपयोगी संत होते हैं। वह ज्ञानी जनाश्रित अप्रतिक्रमण सराग चारित्र लक्षण वाले शुभोपयोग की अपेक्षा यद्यपि अप्रतिक्रमण कहा जाता है, तथापि बीतराग चारित्र की अपेक्षा वह अप्रतिक्रमण वस्तु निश्चय प्रतिक्रमण ही है। उस भूमिका में दोनों चीजें हैं ना, सराग चारित्र भी है और बीतराग चारित्र भी है, तो उन दोनों को अलग अलग कर दिया। यदि कोई कहे कि वह अप्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण कैसे है, तो उससे कहते हैं कि समस्त शुभाशुभ आश्रव रूप दोषों के निराकरण रूप होने से वह अप्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण ही है। कितना कितना क्लियर लिखा है, कहे राजेंद्र हाथ उठा, देखो कितना क्लियर है। समस्त शुभाशुभ आश्रव रूप दोषों के निराकरण से माने समस्त शुभ और अशुभ इनके साथ फिर आश्रव और फिर दोष दोनों शब्द लगे हुए हैं और समस्त लगा हुआ है माने कोई नहीं छोड़ा। आप किसको मोक्ष मार्ग कहना चाहते हैं, माने यहां यहां जो कम से कम आप कहेंगे नहीं दूसरी जगह है, तो कम से कम इतना तो माने कि यहां नहीं है वो, है ना। इसलिए यह निश्चय हो गया कि स्वानुभव रूप अप्रतिक्रमण ही निश्चय प्रतिक्रमण है। अब स्वानुभूत क्या है, वो तो शुद्ध उपयोग में चला गया, अब मैं ये छोड़ता हूं, इसकी गलती की ये माफ करता हूं, ये गलती ये माफ, ये कहां आ गया। उस विकल्प जाल से क्या प्रयोजन है, और उसकी निरर्थकता और सार्थकता के संदर्भ में मैं आप कुछ कुछ थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि श्वेतांबर परंपरा में रोजाना प्रतिक्रमण करने का, पर्व के दिनों में प्रतिक्रमण करने का बहुत रिवाज है। सारे कार्यक्रम बंद करके भी वो प्रतिक्रमण करते हैं, और छोटा प्रतिक्रमण और बड़ा प्रतिक्रमण है। अब पूज्य गुरुदेव श्री ने ये समय सार पढ़ा है, अब उनने ये निश्चय और व्यवहार सारा प्रतिक्रमण की बातें जानी है, तो उन्हें वो बात बिल्कुल निरर्थक लगती है। और आगे खुद ही सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में ये सब बातें बताई हैं, विस्तार से चर्चा की है। लेकिन अभी क्षेत्र काल का कितना असर होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ी खतरनाक तो है, लेकिन कि रामजी भाई ये नहीं चलेगा, ये प्रतिक्रमण किए बिना तो नहीं चलेगा। अपने यहाँ बैठे ना सौराष्ट्र में यहाँ, ये प्रतिक्रमण तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग हमें जैनी नहीं कहेंगे। अब हमको लोग जैनी माने कम से कम वो प्रतिक्रमण के, तो राम जी भाई ने कहा हाँ हाँ मैं बना दूंगा। तो राम जी भाई ने दस गाथाएं यहां से ली, दस गाथाएं समय सार की, दस गाथाएं प्रवचन सार की, पर सब जोर जाड़ करके उन्होंने कह दिया ये अपना सोनरे बालों का प्रतिक्रमण तैयार है, पापा ने इनका पाठ करें प्रतिक्रमण कैसे चला कि नहीं चला बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा महापुरुष, इतना निर्भय आत्मा, उसको भी ऐसा प्रतिक्रमण चलाना पड़ा है? अब कैसा सोनरा में भी होता था, सोनरा में भी होता था, कि वो हमारे हिंदी प्रांत में नहीं चला, वो वहीं हो जाता था, लेकिन उसका किसी ने अनुकरण नहीं किया, क्योंकि हमारे यहां तो वो समस्या ही नहीं थी। हमारे यहां तो यदि प्रतिक्रमण नाम की चीज को शुरू करें 14 के दिन, तो लोग कहेंगे कि देखो ये क्या आ गया, ये आ गया, मतलब ये नया पंथ आ गया। हमारी उल्टी समस्या थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे वे साधर्मी भाई गुरुदेव श्री के अनुयायी हमारी इस कठिनाई को क्यों नहीं समझते हैं? हमारे नए नए मुल्ला सोनगढ़ जाते थे और वहां से सुन के आते थे भगवान महावीर नौ जय, तो भगवान महावीर की जय बंद होके वे महावीर नौ जय बोलने लगते थे। क्यों भैया तुम हिंदी भूल गए क्या? उनको ऐसा लगता था कि अभी मैं कुछ हूं, महावीर का नौ जय बोलने में कुछ अच्छा लगता था। माने वो सारी परंपराएं जो सोनगढ़ में किस परिस्थिति विशेष से चल रही थी और जिनकी हिंदी प्रांत में बिल्कुल जरूरत नहीं थी, उनको हमने यहां दिया। मैं एक फर्स्ट डे से कहता आ रहा हूं, मैं 50 साल हो गए मुझे इस बात को कहते हुए हमेशा कि यहां नौ नौ क्यों करते हो, नौ की क्या जरूरत है, एक ही बहुत है। ये सारा काम हिंदी में हो रहा है, प्रवचन हिंदी में कर रहे हो और बीच बीच में और भी जो बातें वहां होती थी और उनको कहते हो, उसकी वजह से यहां विरोध होता, कैसे पूरा सोनगढ़ बना देंगे। जैसे समय सार की स्तुति पहले वहां बोली जाती थी, और प्रवचन सार पर प्रवचन चल रहे हों तो भी समय सारी की बोली जाती थी ना, तो अपने यहां दिनवाणी स्तुति बोली जाती है, अंत में बोली जाती है, शुरू में नहीं बोली जाती है। यदि आपको बहुत बुलास छूट रही है तो फिर दिनवाणी स्तुति बोलो ना, समय सार जन्मवाणी समय वो बहुत व्यापक है जन्मवाणी शब्द, और उसमें आ गए ना वो। इन बातों का बहुत विरोध हुआ हमारे, इस वजह से माने वो जो सोनगढ़ी पना दिखता था तो फिर वो हमारा प्रवचन मुश्किल हो जाता था, और यदि हमारा शुरू से अंत तक हिंदी पना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, थोड़ी किसी लोगों को कड़ी भी लग सकती है, क्योंकि जिस कारण से गुरुदेव ने वहां वो प्रतिक्रमण शुरू किया उसी कारण से हम अपने हिंदी प्रांत के लिए ये आपके अपेक्षा करते हैं कि आप यहां पत्थर मत फेंको शांत, क्योंकि उस वक्त तो हमारे मंदिर एक भी मंदिर नहीं था हिंदी प्रांत में। उन्हीं पुराने मंदिरों में जहां सारी समाज पूजा पाठ करती है उन्हीं में पूजा पाठ करना पड़ता था, उन्हीं में प्रवचन करते थे और उन्हीं में से फिर मोक्षु बनते थे। अब हमें ऐसा अलग करके बस वो कोई हमारी सुनने आएगा ही नहीं, तो हमने मोक्षु बनने का चांस लोगों को खत्म कर दिया। मुझे तत्व ज्ञान से मोक्षु बनने दो ना, उन्हें ये समझाओ जो ये बात आ रही है, ये शास्त्र का प्रमाण दिखा दिखा के बताओगे कुंद की है ना, ये निकाल निकाल के बताओ, ख्याल में आई ना, तब तो उनके गले वो बात उतरेगी। अभी देखिए प्रतिक्रमण की कितनी व्याख्या चल रही है अपने यहां, इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा है और वो कसाय पहाड़ जैसे ग्रंथ में, कसाय पहाड़ी था ना, कसाय पहाड़ जैसे कर्म ग्रंथ में भी ये लिखा है कि पहले शुद्धोपयोग हो, फिर शुभोपयोग में आए और फिर शुद्धोपयोग में जाए, उसका नाम प्रतिक्रमण है। अब वो सारा प्रतिक्रमण तो वो एक तरफ रह गया जो वो किया जाता है, और ये प्रतिक्रमण है। और वही शुद्धोपयोग शुभोपयोग में जो आते जाते हैं, जो उन्हीं का हुआ ना, अब इसके नीचे से गृहस्थों का है ही नहीं है। क्या नुकसान है साधक करने में? तो तुम तो केवल ज्ञान भी कर लो ना, नुकसान तो केवल ज्ञान होने में भी कुछ नहीं है ना, लेकिन होता नहीं है ना उसके पहले, कहां से कर लोगे? हम क्या चाहते हैं कि गृहस्थ धर्म की पूरी सुविधाएं उठाएं और मुनि धर्म की एकाध क्रिया करके उसका भी लाभ ले लें। आचार्यों ने वो क्रिया उस भूमिका में बताई है तो उसके नीचे संभव नहीं है, इसलिए बताई है। ब्रह्मचर्य व्रत यदि सातवीं प्रतिमा में बताया है तो इसलिए बताया है कि छठवीं प्रतिमा तक संभव नहीं है। तो फिर क्या करें? शादी करें, पत्नी मर गई हो तो दूसरी करें कि पहली करें? कौन कहता है को करो तुम्हें? तो हम ब्रह्मचर्य ने, लेकिन ब्रह्मचर्य होता ही नहीं है, तुम शादी मत करो ना, कौन रोक रहा है? लेकिन ब्रह्मचर्य तो सातवीं प्रतिमा में होता है, है? तुम्हें ब्रह्मचर्य लेना है तो सातवीं प्रतिमा लो, और वो समर्थन होता है पहले, और फिर दूसरी प्रतिमा होती है, फिर पालो। कोई व्रत नहीं पालना है इसको, किसी बंधन में बनी बंधना है, समर्थन समर्थन के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, फिर कोरा ब्रह्मचर्य लेना है और दुनिया को बेवकूफ बनाना है। कि गुरुदेव भी तो देते थे ना, गुरुदेव साफ कहते थे कि ये नहीं है, ये तो स्वाध्याय के लिए निर्वृत्ति है, कि तुमको ज्यादा दुनियादारी के चक्कर में नहीं उलझना पड़े, शादी करोगे, बच्चे होंगे, फिर उनकी कमाना धमाना सब, इसके लिए ये निर्वृत्ति है। मैं बाबू भाई जैसे आदमी से मैंने ये सब बातें करी हैं। क्या मैंने कहा? देखो बाबू भाई, अब तो मैं आपकी सत्य मानू और या सर्वज्ञ भगवान की, बोलो किसकी मानू? शांति समझ में आए? क्या कहा मैंने राजेंद्र? सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि सातवीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत होता है, है ना? और आप कहते हो मानो पहले, तो किसकी मानू मैं? कि ज्यादा है, बड़े बड़े नाम मत लो मेरे सामने, सबको एक साथ चूली पे मत चढ़ाओ, लेकिन ये तो सर्वज्ञ भगवान की बात है। कोई भी कहे इसमें कुछ मीन मेख नहीं हो सकती है। उन्होंने इतने ऊपर जाकर के किया, उसके पहले ब्रह्मचर्यानु व्रत की बात करी, तो तुमने ब्रह्मचर्यानु व्रत लिया है पहले, जो ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हो, देख रहे ना, इसलिए ब्रह्मचारियों की क्या दुर्दशा है, मुकदमाबाजी, झगड़ा, सरना, जितने जितने झगड़े चंटे के काम है सब इनके जुम्मे में हो गए, क्यों तो खाली है दिन भर और कुछ सोचते ही नहीं है। यदि वो सही स्थिति से लिया होता तो ये इसमें हो सकता है, इस भूमिका में ये बात हो सकती है, अरे प्रतिक्रमण भी कर लेंगे। अरे पहले शुद्धोपयोग में जाओ, पहले प्रत्याख्यान हो, फिर वहां से आएंगे ही सीधे सबक श्रेणी में चढ़ के केवल ज्ञान तो हो नहीं जाएगा, तो फिर द्वारा शुद्धोपयोग में जाएंगे, उसका नाम प्रतिक्रमण है। सोनगढ़ में भी होता था, गुरुदेव का भी तो बताया ना, गुरुदेव का कैसा होता था, है? पहली आरती घुस गई हमारे यहां देवादशी की, टोडरमल जी के आमना में बिल्कुल किसी भी तरह की आरती को कोई जगह नहीं है, ना तो वो घी की दीपक की, ना वो तुम्हारी टॉर्च वाली, कोई नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं। है की आरती, किसकी आरती? आरती माने क्या होता है? बड़े दादा ने पूरी किताब लिख दी उस पर, एक पढ़ी आपने, क्या नाम? दिन पूजन रहस्य। और वो विद्यानंद जी को इतनी अच्छी लगी कि हजारों उनने बटवाई, जहां जहां वे गए वहां वहां उन्होंने वो किताब लेके, बड़े दादा को फोन कराया 1000 किताब लेके आओ, 1000 किताब लेके बड़े दादा गए, पहले इनका सम्मान कराया, फिर वो किताब बटवाई, उसमें लिखा कि आरती माने क्या होता है। कहूं आरती भारती पुरुषार्थ गुण गाय, पढ़ा पूजन की पंक्ति है क्या? नहीं बोले, ऊपर की पंक्ति क्या है? क्या जरूरत है अपने अपने तरीके से काम चलेगा? वो जयमाला शुरू होती उसके ऊपर का छंद है कि हे भगवान अब मैं आपकी आरती कहता हूं। कहूं आरती तो आरती करने की चीज नहीं है, कहने की चीज है। लेकिन मैं अपने घर से थोड़ी लाया हूं। कहूं आरती और भारती दिनवाणी, और उसमें पुरुषार्थ के गुणों का गान करूंगा मैं कि पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति होती है, और बाकी के 5-4 संवाद भी साथ में नियम से होते ही हैं। ऐसे एक दो नहीं, बड़े दादा ने कम से कम 25 प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि जहां आरती शब्द का अर्थ दिनेन्द्र भगवान का गुणगान करना होता है। एक भी ऐसा दीपक होता है उसमें घी जलता है, उसमें कीड़े मकोड़े गिरते हैं, और वो फिर वो कैसा क्या होता है, है? अभी वसुंधरा में आ गई, फिर वो आ गई, फिर उसके बाद में वो हटी तो वो लाइट की आ गई, टॉर्च की। अब मैंने सुना फिर लौट के वही आ गई घी की। क्योंकि घी की बोली गुजरात में श्वेतांबर समाज का प्रभाव होने से हर बोली को घी बोली कहते हैं, सुना आपने? विदेश में भी, तुम्हारे शिकागो में भी घी बोली होती है। कोई बोली सौधर मिंद्र की बोली लग रही हो तो उसे क्या बोलते हैं? भैया घी बोली होगी। बोली माने घी बोली। और फिर इतने मन इतने मन इतने मन अपने बोलते थे ना चुमन भाई ठाकुर सी, है मन, दो मन, चार पांच। मैं कही मन क्या होता है? कि 2.25 रुपया। मन तो तोल का नाम है, ये रुपया कहां से आ गया? मतलब अब समझ लो कि कितना पुराना अज्ञान है। जब 2.25 रुपया किलो घी बिकता, मन 2.25 रुपया का एक मन माने 40 किलो घी बिकता होगा, तब शुरू ही होगी ये अज्ञान। कभी कभी कितना पुराना होता है, हैं? अब उस दिन से भाव आज तक नहीं बदला, घी बोली। अब ये है अब इनने अपनाई क्या की जो भी, अब गुरुदेव का नाम लेके हमारे यहां नहीं घुसेड़ सकते इसको, हमको तो जाके बनेगा। हमारी सेठानी जी तो 20 पंथी थी, तो उन्हें तो घी की आरती चाहिए थी, वो तो दीपक चाहिए था, हैं? अरे अब हम पहुंच गए तो केरबेर का संग हो गया। हम कहेंगे कि टोडरमल जी का मंदिर है, टोडरमल जी का स्मारक है, इसमें ये कैसे चल सकता है? बहुत झगड़ा हुआ। हमारा मंदिर हमने बनाया पर हम अपनी आरती तक नहीं कर सकते, हैं? फिर बुद्ध का जी बीच में पड़े और वो लाइट और शेतानी से कहा इससे कर लिया कर, हमसे कहा कि दादा चलने तो थोड़ी। अब किस वक्त क्या चीज कैसे घुसर जाती है आप भी हमसे कह सकते हैं कि आपके इस मार्ग में क्यों चली वो, अब नहीं चलती है, झगड़ा कहना। मेरे कहने का मतलब ये है कि दीर्घ काल की कहां कैसी परिस्थितियां बनी और कहां कौन चीज चल गई, उससे उस अज्ञान के पीछे गतानुगत को लोका बस बात चलो, एक भेड़ के पीछे भेड़ जाती कुएं में गिरती जाती है, हम सब क्यों कुएं में गिरते जाएं? बहुत गंभीरता से विचार करने की चीज है। आप वहां जाएं, गुजरात के एरिया में जाएं और पूरा गुजराती में प्रवचन करें और सब करें, तो फिर साथ में वो भी बोलें, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब बिल्कुल प्योर हिंदी प्रांत, दिल्ली में, जयपुर में बैठे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, और एक बाकी गुजराती का बोल के क्या करोगे? क्यों? तो गुजरात में तो बोल सकते हैं कि नहीं, पहले पूरा गुजराती में प्रवचन करना तब बोल सकते हो। हिंदी में प्रवचन करोगे तो भगवान महावीर की जय बोलनी पड़ेगी, स्वामी जी की भी बोल सकते हो, लेकिन कान जी स्वामी की जय होगी, वो नौ जय नहीं होगी। अब इतने चिढ़ते हो कि हाँ बहुत चिढ़ता हूं मैं 25वीं दफे ये व्याख्यान दे चुका हूं सब जगह, और बहुत लोगों को नाराजगी होती है इससे मैं जानता हूं, कि मैं तो कभी जिंदगी में किसी ऐसी नाराजगी की परवाह कभी किसी की नहीं है। देखो अभी एक निश्चय प्रतिक्रमण ये है, अव्यवहार प्रतिक्रमण तो कहते वो ठीक है। अब व्यवहार प्रतिक्रमण में भी जो अशुभ क्रियाएं हैं उनसे छोड़कर शुभ क्रियाओं में आए, क्योंकि अशुभ से सीधी शुद्ध नहीं होती, अब समझे ना, इसलिए वो कहा, लेकिन वो शुभ क्रिया से तो कुछ होता ही ना बंध नहीं होता, ना पुण्य का ना पाप का, ना शुभ क्रिया ना अशुभ क्रिया से, शुभ भाव और अशुभ भाव से, वो तुम्हारे आने से उस दिनवाणी में उसे प्रतिक्रमण कह देने से वो बंध का अभाव नहीं हो जाएगा, निर्जरा नहीं हो जाएगी, होगा तो बंध ही, तुम्हें कहने की सुविधा दे दी उसे धर्म, लेकिन धर्म का काम नहीं होगा उससे। अब तुम हमें निकाल निकाल के पेज बताते हो, क्यों पेज बताते हो? एक लाख जगह होगी, निश्चय की बात एक जगह और व्यवहार की एक लाख जगह। हमारे पास सबका यही उपाय जवाब है कि व्यवहार से कहा होगा, क्यों मैं खत्म, तुम जाओ लाओ कितने प्रमाण लाते हो, वो प्रमाणों के बोझ से मत दबाओ कि सब धबला में फैलाने में इसमें उसमें उसमें। अब जो कसाय पहाड़ का आ गया ना, हमें नहीं मिलता तो तुम हमें नहीं मानते, अब क्या करें? तो ऐसे मिल जाए कहीं तो छांट के रखना चाहिए। मेरा आशा समझ गया ना कि इसमें रंत मात्र भी फर्क नहीं है, कितना भी हम तर्क वितर्क करें। यदि कोई कहे कि वह अप्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण कैसे हुए, है तो अप्रतिक्रमण और उसे तुम निश्चय कह रहे, इसका मतलब झूठा तो हमें ये दिखता है निश्चय, क्योंकि प्रतिक्रमण को प्रतिक्रमण कह रहे वो व्यवहार, अप्रतिक्रमण को प्रतिक्रमण कह रहे ये निश्चय है। जो तो उत्तर कहां पढ़ रहे थे अपन, तो उससे कहते हैं कि समस्त शुभाशुभ आश्रव रूप दोषों के निराकरण रूप होने से वह अप्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण ही है, इसलिए यह निश्चय हो गया कि वह स्वानुभव रूप अप्रतिक्रमण ही निश्चय प्रतिक्रमण है। बनारसी दास का एक छंद है और उसमें ये बताया है कि ये ज्ञानी जीवों के 24 घंटे भगवान जिनेन्द्र की भक्ति हृदय में उनके बसती है, और उसका पूरा एक छंद है। मैं जब जयपुर में गया था 67 में सबसे पहले, आज से 46 वर्ष पहले, तो मैंने मंदिर में वो छंद लिखाया था कि मेरे हृदय में 24 घंटे भगवान की भक्ति बसती है, लेकिन तुम तो भक्ति में तो दिखते ही नहीं। कि भैया लिखा कि मैं कभी मैं शास्त्र पढ़ता हूं, कभी उनकी बात सुनता हूं, कभी उनकी बात सुनाता हूं, कभी उनकी बात लिखता हूं, कभी पढ़ाता हूं। इस तरह मेरे हृदय में एक समय भी ऐसा नहीं है कि हे भगवान तुम्हारे भक्ति मेरे हृदय में ना बसती हुई, ऐसा उसने लिखा है, वहां लिखाया था। अब वो मिट गया, मंदिर ही मिट गया, बदल गया, सब हो गया, लेकिन मुझे तो मंदिर में जाता हूं तो वहीं पर वो लिखा आज भी दिखता है क्या? बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट जगह मैंने वो लिखाया था। अपने ऑफिस में मैं जहां बैठता था, जहां आजकल शांति जी बैठते हैं, उसके सामने ही अभी भी लिखा है। वो लिखाया था मैंने श्रीमद का, वो कुछ शेष रहा उन साधन से, जप तप नियम हो ताप कियो, जो जो आप समझ गया ना, वो मैंने उसके सामने लिखा था। क्यों? कि जब मैं लिखते लिखते और मेरी गर्दन ऐसी हो तो सबसे पहले मुझे वो देखना चाहिए। क्या तो ये ऐसी चीजें हैं, इन पर वे लाखों प्रमाण निछावर हैं। यद्यपि यह व्यवहार प्रतिक्रमण की अपेक्षा अप्रतिक्रमण शब्द से बात है, तो व्यवहार प्रतिक्रमण का निषेध करने के लिए हमने इसे अप्रतिक्रमण कहा है ना, तथापि यह ज्ञानी जनों को मोक्ष का कारण बनता है। शुद्धात्मा को उपाधेय मानकर निश्चय प्रतिक्रमण के साधक भाव के रूप में विषय कषाय से बचने के लिए यदि व्यवहार प्रतिक्रमण किया जाता है तो वह व्यवहार प्रतिक्रमण परंपरा मोक्ष का कारण कहा जाता है, अन्यथा मात्र स्वर्गादि सुख के निमित्त भूत पुण्य का ही कारण है। मैं पुण्य बनेगा वो परंपरा मोक्ष का कारण कह दिया होगा, वो ये पैसा लगा लगू करके है ना, निमित्त की प्रधानता से। पर इसका ऐसा होता है कि जब हमने महाविद्यालय खोला था तो सबसे पहले एक 13 विद्यार्थियों का बैच था, जिस पहले बैच में जतीश भाई, अभिनंदन कुमार जी, अभय कुमार जी, राकेश नागपुर वाले, ये सब लोग थे। और एक लड़का और था जिसका नाम था, वो इंजीनियर पास करके आया था, क्या नाम था भैया? हाँ, संतोष दमोह वाला, वो भी इंजीनियरिंग पास करके हमारे यहाँ उपाध्याय में भर्ती हुआ था और बस पढ़ के शास्त्री होके निकला 5 साल बाद। तो हम आज भी जब विदाई समारोह करते हैं तो हरेक को बोलने के लिए मौका देते हैं और उसे उन्हें कुछ पॉइंट बता देते हैं। तो हम वैसे सुन रहे थे, 5 साल हमने उन्हें पढ़ाया था, खुद पढ़ाया था एक एक सब चीजें। और जब उसने बताया कि मैं मेरे कोई मतलब ये महासौभाग्य कैसे मिला, मतलब मैं शास्त्री हुआ, ये तत्व ज्ञान मुझे मिला, तो उन्होंने ये सुनाया कि मैं रेल में कहीं जा रहा था तो वहां पर एक पंडित भगवान दास जी मुझे मिले, वो भी दमोह के थे, और उनने मेरे से कहा कि तुम टोडरमल स्मारक भवन में पढ़ने जाओ, और इसलिए मेरे को ये सब कुछ हो गया। जब मैंने भाषण दिया अंत में, मैंने कहा बेटा निमित्त मैं भी निमित्त ही तो हूं, जिन्हें 5 साल लगातार पढ़ाया उस निमित्त को भूल गए, वो एक सेकंड उस रेल में जिसने ये कह दिया था कि वहां पढ़ने जाओ, और तुम्हें वो एड्रेस भी पता उन्हें नहीं बता पाया था कि कहां जाना है। तो एक निमित्त की प्रधानता जगत में कितनी है, कितनी है वास्तव में, जो देखो। अब अकेले उसकी बात नहीं है, अभी यहां सब आदमी आपस में चर्चा करते हो, चर्चा करोगे वो बात नहीं, करते हो आज तक, तो सब 90% बताते हैं कि मैं यहां गुरुदेव के पास कैसे आया, तो उसने कहा था कि उसने कहा था कि उसने कहा था, और उसने कहा था कहानी है ना, है? है? क्यों समझ गया ना, वो बिल्कुल तुच्छ निमित्त तुच्छ नहीं, तुच्छाति तुच्छ। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, है? वो ही ऊपर जाके माथे पे डर के बोलता है, और बीच में कितने कितने निमित्त बीच में आए और उनमें सब गौण हो जाते हैं। ये निमित्त तो एक दूसरे को काटते हैं। ये हमारी दृष्टि कैसी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो, और जो अज्ञानियों का से संबंधित अप्रतिक्रमण है वह तो मिथ्यात्व विषय कसाय की परिणति रूप होने से नरकादि दुखों का कारण है। तो हम तो प्रतिक्रमण छोड़ के उस अप्रतिक्रमण में जाने के लिए थोड़ी कहते हैं, और आज का 99% जीव ये प्रतिक्रमण को छोड़ के उसी में जाता है। खतरा तो सबसे बड़ा ये है ना, ये कल से छोड़ देंगे तो वो एक घंटा जो बचाएंगे प्रतिक्रमण में से, उसे समय सार का स्वाध्याय करने वाले नहीं है। टीवी देखेंगे, निश्चित रूप से किसी विषय कसार के काम में ही वो काम लगाएंगे। तो वो भी समस्या कोई छोटी मोटी तो है नहीं, बहुत बड़ी है ना। कि ये बात वो निश्चय उस प्रतिक्रमण में जाने के लिए है, और जो ऐसे अप्रतिक्रमण में जाता है जो सीधे नरक का रास्ता है, तो उस तरफ भी सावधानी। वो आगे आगे एक बहुत अच्छा कलश आने वाला है ना, नहीं आने वाला है तो मैं अभी नहीं पढ़ता हूं उसे, है ना। हाँ हाँ हाँ, दुविधा क्यों जाती हो। हाँ हाँ बोलो, यहा प्रतिक्रमण में विष प्रणीतम उनमें कुतस्यात्। कितने करुणा भाव का हमें कहना मुश्किल है। हम कह रहे हैं प्रतिक्रमण को छोड़ो भैया, ये पुनर्बंध का कारण है, इसे छोड़ो। ऊपर को तो जाते नहीं, नीचे नीचे जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, हम नहीं समझाएंगे ये बात। कैसा पंडित जी, ऊपर तो कोई जाने वाले है नहीं, आप ऐसी कह दोगे तो जो करते हैं वो और छोड़ देंगे। हजारों लोग हमसे ये बात कहते हैं और उनकी 100% सत्य बात है। अब बोलोगे इस तत्व ज्ञान का निरूपण बंद कर दें, ये महासत्य में छुपाई रहने दें, और हमारे बाप के हाथ में है क्या, हम तो समय सार पढ़ रहे हैं। अब उसमें जो आया है तो जब आया है तब भी उसका अर्थ नहीं बताएं तो फिर कौन से कहां कब बताएंगे, बोलिए। वो इसके लिए वो उदाहरण है सबसे बढ़िया कि वो अंधा आदमी 84 लाख योनियों के बड़े भारी हॉल में हो गया था, और वो दीवार पे ऐसा हाथ रख रख करके दरवाजा खोजता था। एक ही दरवाजा था कि उस दरवाजा वो मिले तो बाहर निकल जाए, निकल सकता था, लेकिन भाग्य की बात कि जब दरवाजा आता था तब उसके माथे में खुजली होती थी। तो वो माथे में खुजली करते करते आगे बढ़ जाता था और फिर चक्कर कर जाता था। माने ये समय सार में लिखा है आ गया, तो हमें उस डर से कि कोई भ्रष्ट ना हो जाए फिर हम उसको निकाल दें अपना आगे बन करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि खूब धुनाई करना चाहिए, जितनी हो सकती हो उतनी। मुश्किल से एक तो मौका मिला है, एक मौका मिला है जिसमें आचार्य का पृष्ठ बल है, जिसे ताकत से कह सकते हैं। दूसरी जगह तो वैसे ही जान खा जाएंगे। हाँ, होने नहीं देंगे, कहने नहीं देंगे, लौट के वहीं चले अपन भैया। कहाँ चल रहे थे? और जो अज्ञानियों से संबंधित अप्रतिक्रमण है वह तो मिथ्यात्व और विषय कसाय की परिणति रूप होने से नरकादि दुखों का ही कारण है। इस प्रकार प्रतिक्रमण आदि आठ विकल्पों रूप शुभोपयोग यद्यपि सविकल्प अवस्था में अमृत कुंभ है तथापि सुख दुखादि में समता भाव रखने रूप परम उपेक्षा रूप संयम की अपेक्षा विष्कुंभ ही है। और वो जो ऊपर वाला है ना वो किसी अपेक्षा विष्कुंभ नहीं है, है ना। और अप्रतिक्रमण को जो विष्कुंभ कहा है वो तो वो अज्ञानियों वाला अप्रतिक्रमण है ना, उस वाले को कहा है, इस वाले को कभी नहीं कहा है ना। अब इन गाथाओं में स्वामी जी का ये स्वामी जी ने यही कहा है। स्वामी जी के कोटेशन तो मैंने सिर्फ इसलिए दिए हैं कि इनके बिना मुमुक्षु लोग मानेंगे नहीं, ख्याल नहीं ना, इसलिए निकाल निकाल करके दिए हैं। जो बात अभी आप तक समझाई वो ही इसमें है। पर आपको घर पढ़ने की मना कोई नहीं कर रहा, घर पढ़ना ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। आप अंतर फिर रिपीटिशन होगा वैसे का वैसा पूरा, इसलिए मैं अभी इसको आगे बढ़ता हूं। कुछ लोग महानुभाव ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई गुरुदेव का आता है तो आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि गुरुदेव का शत्रु हूं मैं जिसने हर गाथा गाथा पे गुरुदेव को कोट किया हो उसकी भी गुरुदेव की भक्ति में शंका प्रकट करना कितना बड़ा अन्याय है इसकी कल्पना आपको है? ऐसा कोई मिलेगा आपको? एक गाथा ऐसी नहीं कि जिस गाथा में गुरुदेव श्री का कोटेशन उद्धृत नहीं किया हो, और जबकि वो सारी बात आगे पीछे कही जा चुकी है, ख्याल में आई ना है? फिर भी समझ लो गुरुदेव के प्रति ये सच्चा भक्ति भाव का समर्थन एक अलग चढ़ा रहे हैं, ऐसा समझ लेना है? क्यों हेमचंद जी
आगे बढ़ने की अपेक्षा
है। इन गाथाओं का तात्पर्य एक पंक्ति में छल्लक मनोहर लाल जी वर्णी इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इनने भी कम से कम 25-30-40 पेज लिखे हैं, इन्हें एक पंक्ति का जगह मिली आपने लेकिन जगह मिली है? क्या देखो विकल्प रत रहना विष्कुंभ है और स्वभाव रत रहना अमृत कुंभ है। एक पंक्ति में सब कुछ आ गया ना, क्या कमरा राजी है। विकल्प में लीन होना ये विष्कुंभ है, पर निर्विकल भगवान आत्मा में लीन होना वो अमृत कुंभ है। बस ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था, अब किसका किन का कसाय पहाड़ का। ये खत्म होने के बाद कहां से फिर बात शुरू होती है? देखो प्रतिक्रमण देखो इसका अर्थ नहीं थे इन्वर्टेड कमा क्लोज हो गया। प्रतिक्रमण की उक्त व्याख्या से कौन सी व्याख्या कौन बताएगा? हाथ उठाओ फटाफट, कौन बताएगा? तू बताएगा? बोल भगवान, बोल बोल, खड़ा हो जा, तेरे से जरूर पूछूंगा। हैं? बड़े लोगों से इसलिए नहीं पूछता कि वे सब इज्जत वाले हैं, छोटे बच्चों की इज्जत जाने का कोई डर नहीं होता, क्यों? इसलिए उनसे पूछ लेता हूं। कौन सी व्याख्या है कि पहले प्रत्याख्यान हो शुद्धोपयोग रूप, फिर गिरे और फिर द्वारा प्रत्याख्यान हो उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। इस व्याख्या से प्रतिक्रमण की उक्त व्याख्या माने समझ गया? उक्त माने कौन सी? ऊपर ही कही है जो है अनिल जी, ठीक है। यही स्पष्ट होता है कि प्रथम बार पर का त्याग करके आत्मा में आ गए यह निश्चित प्रत्याख्यान हुआ, फिर कमजोरी के कारण आत्मा से च्युत होकर पर में चले जाने पर पुनः पुरुषार्थ पूर्वक शुद्धोपयोग को प्राप्त होना और आत्मा में लौट आना ही निश्चय प्रतिक्रमण है। इस प्रकार निश्चय प्रत्याख्यान ही भी शुद्धोपयोग रूप ही है और निश्चय प्रतिक्रमण भी शुद्धोपयोग रूप ही है। अब चाहे उसको तुम निश्चय प्रत्याख्यान कह दो चाहे निश्चय प्रतिक्रमण कह दो, बस नाम की बात है। इस तरफ से नाम के ये रख दिया, उस तरफ से ये रख दिया, बात सिर्फ ये वही है। इस संदर्भ में अपने नियम सारे याद दिलाया था, हर प्रत्याख्यान भी वो शुद्धोपयोग, प्रतिक्रमण भी शुद्धोपयोग, आलोचना भी शुद्धोपयोग, सब व्यवहार प्रतिक्रमण में लगे हुए दोषों का गुरु के समक्ष या स्वयं की ही साक्षी में प्रायश्चित किया जाता है। यहां यह कहा जा रहा है कि गलती करके भी प्रायश्चित नहीं करना व्यवहार अप्रतिक्रमण है और वह दुष्कुंभ है, ठीक है। और गलती हो जाने पर प्रायश्चित करके उसे सुधार लेना व्यवहार प्रतिक्रमण है, वह अमृत कुंभ है। आचार्य शास्त्रों का यह कथन व्यवहार न्याय का कथन है, सो उचित ही है, हमें कर उसमें ऐतराज है। अभी नया शब्द आया प्रायश्चित, अभी तो प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण चल रहा था ना, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान चल रहा था, अब आया प्रायश्चित। ये प्रायश्चित क्या है? सीधी व्याख्या दे, चित्त माने भगवान आत्मा, पर से हटकर आत्मा में जाना वही प्रायश्चित, आगे वही लौट फिर के वहीं की वहीं है। अब जाकर के खुद गुरुदेव के सामने अपनी गलती का व्याख्यान करना और फिर उनसे उस गलती के लिए जो भी दंड विधान है वो आगम के अनुसार उन दंड के विधान की प्रार्थना करना, ये इसे भी प्रायश्चित बोलते हैं। और मुनिराजों को रोजाना ही भोजन आहार के बाद में अपने गुरु के पास जाकर ऐसा करना पड़ता है। मैंने भोजन के बाद ही क्यों, क्योंकि भोजन में के टाइम में ज्यादा गड़बड़ी होना संभावना है। क्यों क्यों? क्योंकि गृहस्थों की संगति में जाएंगे। गृहस्थों का घर काजल की कोठरी है, पर काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखर पे लागे पर लागे ही। तो काजल की कोठरी में गए थे, अब वहां जाके बनाओ कि ऐसी ऐसी गलती हो गई, आचार्य देव में आज्ञा पालन करो। क्यों नहीं? इन्हीं उनने झूठ बोल दी और नहीं बताई कोई गलती, तो एक साथ में लगाना चाहिए आगे आचार्य महाराज को, क्यों कि ये बता रहा है सही है कि कुछ और गड़बड़ थी। तुम सोच भी क्या सकता है, नग्न दिगंबर दशा जिसने धारण की है उसकी बात के लिए भी कोई गवाह सफाई की जरूरत है, वहां अदालत बैठेगी, वो वकील की जरूरत है, वहां तो ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि वो कोई गलती छिपाएगा। क्यों? और जो भी उसको दंड विधान प्रायश्चित दिया जाएगा वो प्रायश्चित, वो नहीं साहब अभी तो बहुत कठोर सजा है थोड़ी कम कर दो, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा होता है, सुनो, एक मुनिराज आए और उन्होंने कहा कि मेरे से ऐसी गलती हो गई, जो भी गलती बताई, तो उनके लिए आचार्य ने दंड दिया कि 3 दिन के उपवास करो। अब दूसरे मुनिराज आए और उनने भी बिल्कुल वही कि मेरे से ये गलती, बिल्कुल वही गलती बताई, ध्यान से सुनना, और उनको सजा दी गई कि तुम 3 दिन तक उपवास नहीं करोगे। ये शास्त्र की बात बता रहा हूं मैं, हरियाणा नहीं। एक ही अपराध, उसके एक को वहीं उन्हीं के सामने दूसरा लेन से लगा था ना पीछे अपना अपराध बताने के लिए, उन्हीं के सामने 3 दिन के उपवास की सजा और दूसरे को 3 दिन उपवास नहीं करने की सजा, पहला भी सुन रहा है, ये अन्याय नहीं चलेगा, ऐसा किसी ने नहीं किया। किसी के चित्त में विकल्प भी नहीं आएगा कि ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों। कैसा वो तो मुनिराज है तो उनके में तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे चित्त में तो आ रहा है, हम तो गिरफ्त है ना, हमें तो आ सकता है कि ऐसा अन्याय क्यों। वहां भी भाई भतीजावाद चलता है क्या, वे मुनि महाराज उनके कोई रिश्तेदार होंगे हैं? और वे कोई शत्रु घर से आए होंगे। अरे भाई जो पहले आया था ना वो 25 वर्ष का हट्टा कट्टा जवान था, है ना, और उससे वो जो गलती हुई थी किसी माँ बहन की तरफ देखने की या कुछ भी जो भी समझ लो, तो वो आचार्य समझ रहे कि जरा जरा वो ज्यादा ही वो है ना मस्ती आ रही है, तो 3 दिन का खाना नहीं खाएगा तो कुछ वो डाउन हो जाएगी क्या, समझ गया। इसलिए उनको प्रमाद का कोई केस था, तो एक जम के खाए रोज ही ना, जवान है तो इसकी वजह से इसको आलस आता है, प्रमाद आता है, समझो प्रवचन में नींद आ गई थी तो उसको उसकी सजा दी थी क्या कि 3 दिन उपवास करोगे। और दूसरे को क्यों, भाई उन्हें भी नींद आ गई थी कि इनको कमजोरी के कारण नींद आ गई, अब ये बुढ़ापे में ये उपवास उपवास नहीं चले वो ये मानते नहीं है, तो उन्हें ये सजा दी गई कि 3 दिन तक उपवास नहीं करें, समझ गया। क्योंकि सजा देना उद्देश्य नहीं है, क्या है उद्देश्य, उसको परिणति सुधारना है शिष्य की, भले ही नाम उसकी सजा है, लेकिन महाराष्ट्र में सजा को क्या बोलते हैं, शिक्षा, हम शिक्षा देंगे तुम्हें, गुजराती में भी बोलते हैं, गांधी जी को शिक्षा दी थी ना, बेंच पे खड़े हो जाओ तो वो सिखा रहे हैं एक चीज, वो दंड नहीं है वो शिक्षा है, माने उस सामने वाले के चित्र में ऐसा विकल्प नहीं आता है कि ये अन्याय करेंगे ना, ये अन्याय करते हैं, होगा कोई कारण, अपनी समझ में नहीं आया तो नहीं आया, समझ में नहीं आना उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन उससे फिर समझे ना, पक्षपात की गंध उसमें खोजने का विकल्प भी आना तो गए काम से, समझ लो। वो आती ना रक्षाबंधन की कहानी, तब उसमें आता गया जब अकम्पनाचारी को आए सुसागर सामने, उन्होंने वादविवाद किया था तो उन्हें डर लगा कि अब आएंगे उधमबाजी करेंगे, तो जाओ वहीं मरो, तुम्हारे लिए सबसे सारा संघ सजा क्यों भोगेगा, क्यों ऐसा लिखा पुराने में, मेरे को नहीं पता कोई आचार्य ऐसा कैसे कह सकता है, तुम जाओ बेटा तुम्हें मरना, तुम्हारे पीछे सब क्यों मरे, कह सकता है, है? तो मैंने इसके लिए कहानी लिखी रक्षाबंधन की, और मैंने क्या किया उसमें, तुम तो कहोगे बदल दी, मैं भी कहता हूं बदल दी, वो जब आए और उन्होंने सारा किस्सा सुनाया सुसागर ने कि वाद विवाद हुआ और मैंने उनको पूरा भव की याद दिला दी और ऐसा हुआ, फिर उनकी सारी इज्जत निजी गर्दन करके रह गए, राजा के देख करके कुछ कर नहीं सके चले गए, तो अकम्पनाचार्य एकदम गंभीर हो गए, डर गए। अरे उनका नाम अकम्पनाचारी नहीं था, नाम तो कुछ और होगा, ये अकम्पनाचारी तो उनकी उपाधि थी कि बड़ी सी बड़ी विपत्तियों में जो कांपे नहीं उसका नाम अकम्पन। ये नामों से ऐसा लगता है कि कहानी काल्पनिक है, घबराना नहीं कपने वाले आचार्य का नाम अकम्पन, बाद बाद ठोक के लड़ने वाले का नाम सुध सागर, और रक्षा करने का नाम वाले का नाम विष्णु कुमार, ये सब बिल्कुल लेखक के दिए हुए नाम नहीं लगते हैं। अभी ख्याल नहीं बात, ऐसे सार्थक नाम होते हैं वो सुख सागर रक्षा कर देते, क्यों अकंपन वाद विवाद कर लेते, ऐसा नहीं। वो तीन नाम सार्थक नाम है, तो बिल्कुल गंभीर हो गए। ये बात ये देखा श्रुत सागर ने, तो श्रुत सागर को ये समझते देर नहीं लगी कि आचार्य अकंपन के चेहरे पर इतनी गंभीरता आज क्यों। उनके बिना बोले उनने वो बात समझ ली जो चिंता का कारण था उन्हें, क्या तो उनने कहा कि हे गुरुदेव, आप बिल्कुल विकल्प नहीं करें, मैं संघ पर किसी तरह की आंच आई ये बात नहीं होने दूंगा। अब मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं कि मैं वहीं जाता हूं और वहीं खड़ा रहूंगा और वहीं ध्यान करूंगा, जो कुछ होगा मैं भोगूंगा। उनने ये प्रस्ताव किया, मैंने इतना चेंज किया उसने है? तो अकंपन ने क्या कहा, परी वो कहानी आप किसी को में है ना, क्या है क्या कहा उन्होंने अकंपन ने, ऐसे शुद्ध सागर रोज रोज पैदा नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आई, ऐसे शुद्ध सागर रोज रोज पैदा नहीं होते, हजारों में एक आदमी इतना गहरा अध्ययन करने वाला कि श्रुति की शास्त्रों की गहराई को प्राप्त कर ले, लाख हजारों में एक आध होता है। मैं अपने इस श्रुत सागर को मरने के लिए जाने नहीं दे सकता, मरने की आज्ञा नहीं दे सकता। तुम तो कह रहे कि आदेश जा मर जा, मरी हुई जाना आदेश दिया था। मैं कहता हूं कि तुम तो वो मांग रहा है तो कहते नहीं दे सकता है? कि गुरुदेव ये आज्ञा देने नहीं देने का सवाल नहीं है, सवाल संघ की सुरक्षा का है, इसलिए मैं अब जा रहा हूं। कहने नहीं अब आप आज्ञा दो नहीं तो मैं कैसे जाऊंगा, नहीं अब मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा तथास्तु, जाओ तुम अपने मिशन में सफल हो। ये आज्ञा देने का तरीका, बिना आज्ञा के गए नहीं, और वो आज्ञा को किस तरीके से समझ लो मैंने दिलाई, मैंने क्या दिलाई, मैं तो कहता हूं असली तरीका यही रहा होगा, और वो जो ना समझो ने बीच में उसको ऐसा रूप दे दिया। क्या उनने तो आशीर्वाद दिया कि तुम सफल हो, मैंने मर जाने में नहीं, कि संग में पर कोई संकट नहीं आए, तुम्हारी ये जो भावना है ये भावना तुम्हारी सफल हो। अब आप वो कहानी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा कुछ अंतर दिखाई नहीं देगा कि पहले की उस कहानी में इस कहानी में क्या फर्क है। अब वो कहानी फिर लिखी क्यों गई, लिखी तो सिर्फ इसलिए गई थी जो कभी किसी विपत्ति में नहीं कंपे, ऐसे अकंपन को कपा देने वाली घटना घटित हुई क्या है? और जब वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं शुद सागर को, इतना मुश्किल से तैयार होता है विद्वान आता है ना, वक्ता आता सहेश आता है ना, सतेशु जाए ते वीरा और सहेश्रेशु च पंडिता, हजार में एक पंडित बनता है और वक्ता दस सहेश्रेशु। अब आगे मत पढ़ो, आगे में कोई दम नहीं है, किसी मूर्ख का लिखा हुआ है, सेठियों की चापलूसी कौन पढ़ते हो, चीनी लेना चाहिए समझ गए आप? वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे सत्सागर को बर्बाद नहीं हुए क्यों? वो कहते ये नहीं कहते, वे कहते साहब तुम्हें पता नहीं था ना अकंपन क्या कहते हैं अभय जी सत्सागर, तुम्हें पता नहीं था ना मेरी आज्ञा का। तो श्रुत सागर कहता है कि श्रुत के सागर को इतना तो समझ में आना चाहिए बिना गुरु की आज्ञा के ही समझाए। रास्ते चलते चाहे जिससे वाद विवाद करना ये श्रुत सागरों का काम नहीं है, संतों का काम। ये बात तो श्रुत सागर की अकल में आना चाहिए थी, ये बात कहनी थी हमें कि श्रुत सागर की अकल में क्यों नहीं आई ये बात, तो श्रुत सागर के मुंह में डाल के कहलाई। आप समझे ना, एक एक शब्द पे में होता है उसका नाम साहित्य है, एक एक पंक्ति में कुछ भी कहना ना कहानी उसका नाम साहित्य नहीं है क्या? एक एक पंक्ति में जैसे अपने पश्चाताप है ना, तो एक एक पंक्ति में एक अद्भुत बात कही गई है, है? क्या क्या हो सकता था, क्या क्या किया जा सकता था, क्या क्या तुमने नहीं किया, वो सारी बातें कही, लेकिन वो सब राम ही कह रहे हैं। वो राम कहीं से किसी दूसरे से कहलवाओ तो ऐसे लगता है अदालत में केस आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता था क्या, ये अग्नि परीक्षा पहले नहीं हो सकती थी क्या, ये ऐसा नहीं हो सकता था क्या, हैं? मैंने ऐसा क्यों किया, कहीं कोई कुछ कह नहीं। मतलब एक ही चीज को प्रस्तुत करने के अनेक तरीके होते हैं। तो हमको यदि व्यवहार के लोग की बात थोड़ी कहते हैं कि शुद्धोपयोग में पहुंच जाना एक हरेक आदमी को सादा बात तो है नहीं, ग्रस्त होगी तो है ही नहीं, तो हमारी तो छुट्टी। अरे बेटा तुम्हारी करने से भले ही छुट्टी हो लेकिन समझने से छुट्टी नहीं है, समझा तो यहीं जा सकता है, समझा तो यहां जाना चाहिए सम्य दर्शन होने के पहले। क्योंकि वो ऐसा प्रतिक्रमण ऐसा प्रत्याख्यान भले ही जब होगा तब होगा, वो समझ में आज हमें आना चाहिए। क्यों नहीं आया समझ में? लिखा ना कुंद कुंद ने, ये समयसार किन के लिए लिखा है? अप्रतिबुद्ध के लिए लिखा है। और ये बात जो समझा रहे हैं तो हमारी समझ में नहीं आएगी, आनी चाहिए, अवश्य आनी चाहिए। और जरा हम कोशिश करें तो हर एक को अवश्य आएगी। एक बात मुझे कहना है, शास्त्र की बात नहीं है, इस शिविर में कुछ लोग हैं कि मुक्ता के लिए जा रहे हैं, मुक्ता के लिए कहां मांगी तुम ही जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं। हमारे शिविर का ये नियम नहीं है। जो विद्यार्थी क्लास छोड़ के कहीं जाए, मेरा सख्त ऑर्डर है कि उसे द्वारा क्लास में नहीं बैठने दिया जाए, परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाए। जो यहां पर महाविद्यालय में प्रवेश लेने आए हैं, यदि वो ऐसी गलती करते हैं तो उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब मैं इन बुजुर्गों से उन लोगों से जो मेरे जिन्हें मैं आज्ञा नहीं दे सकता उनसे तो मैं क्या कहूं? यदि उन्हें थोड़ी भी समझ है तो इस तत्व ज्ञान के महायज्ञ में आए हैं, वो कैसे छोड़ के ऐसे जा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रवचन में कुछ कमी है। यदि नहीं होती तो किसी को विकल्प कैसे आया कि मैं इसे छोड़ के चला जाऊं और फिर वहां जाके आऊंगा? क्योंकि वो तीरथ भाग नहीं रहा है, मैं भागूंगा। ये प्रवचन कल आपके द्वारा नहीं मिलेगा जो आज मैंने किया है ना? लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये कहता हूं कि जो भी व्यक्ति ऐसा करे उसका मुझे नाम आकर अवश्य बताए, कम से कम मेरे दिमाग में तो आए कि कौन व्यक्ति इतनी अरुचि वाला है कि इतनी मार्मिक बातें छोड़ करके भी यहां वहां जा सकता है। ये मैं जानना चाहता हूं, जैसे मेरी दृष्टि में से दंड बड़ो करतार को कितने दियो उल्हा उतार। ये सबसे बड़ा दंड है कि हम हमारी जो चित्त की गद्दी पे बैठे हुए हैं उसमें सुख से हम उतार दें कि ये बहुत आत्मार्थी हैं, देखो कितनी गर्मी में यहां आए हैं, तकलीफ है ठहरने की खाने की पीने की, लेकिन उसे बर्दाश्त करके भी सुन रहे हैं समझ रहे हैं, ऐसा हमारे चित्त की गद्दी पे बैठे हैं ना, तो मैं थोड़ी सा बोझा कम कर लूं, उन्हें चित्त की गद्दी पे से उतार कर। कोई भी आदमी अब आज से ये जब तक अपना कार्यक्रम चलता है कहीं नहीं जाएगा, और 7 तारीख को जब ये खत्म हो जाएगा 12 बजे, तो जिसको जहां जाना है वो जाए, सारे तीर्थ रहेंगे, कोई तीर्थ भागता नहीं है। तीर्थ पे जाने से मना करते हैं कि हम काय को मना करेंगे कहीं तीर्थ पे जाने से, लेकिन बीच में कोई नहीं जाएगा। कितना श्रम विद्वान लोग करते हैं और इन सब लोगों ने कितना खर्चा किया है, मोटानी जैसे लोगों ने सबने अपने माथे पर सारा बोझा लिया है और आपको सब सुविधाएं जुटाई हैं। हमने कहा था कि हम आएंगे आपके यहां ठहरने की व्यवस्था पूरी नहीं है तो हम आपको नहीं लगाएंगे शिविर, तो इनने हमको कहा नहीं नहीं दादा, हमने इतने कमरे नए बनाए हैं, इतने लेटरिन बाथरूम नए बनाए हैं, हॉल बनाए हैं, लिफ्ट लगाई है, और हमें दिखाया जाकर के आए थे भी गुरुदेव की जयंती पे, मैं भैया हम नहीं जाते ऊपर, कहने नहीं चलो, तो लिफ्ट है ले गए कमरे दिखाए कि हमने ये बनाए हैं। अब इनको सब घाटे में जा रहा है, किसी को उसमें कुछ देने का भाव तो नहीं आता है, और उसका जो उन्होंने किया है आपकी कोई ऐसी खास अपेक्षा नहीं है, आप दोगे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं दोगे तो भी कोई यहां बाल हिलने वाला नहीं है, सब शांति से होने वाला है। आखिर ये बंबई का है, लेकिन आना चाहिए हर एक को विकल्प, जिसकी जो शक्ति है उस सीमा में उसको अपना सहयोग करना चाहिए और उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। आज से कोई भी व्यक्ति इस शिविर को बीच में छोड़ के नहीं जाएगा इस मंगल भावना के साथ।